आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अधिकतर गैर कानूनी ड्रग्स की जगह डॉक्टर्स द्वारा बताई गई दवाइयाँ यानी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स को आप अधिक मात्रा में ले लेते हैं, यानी उसका ओवरडोज कर बैठते हैं, और डॉक्टर्स द्वारा बताई गई दवाई का दुरुपयोग स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होता है। तो आज इसी पर बात करते हैं इस सेटलमेंट गाइड में। कई बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाई आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाती है, लेकिन यदि आप उसे अपने आप से या जैसे बताया गया है वैसे ना लें तो ये बहुत खतरनाक भी साबित हो जाता है। स्क्रिप्ट वॉइस एक नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था है जो इस दिशा में काम कर रही है कि डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों का प्रयोग कम किया जा सके, और इसकी CEO हैं बी मोहम्मद। उनका कहना है कि लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि कब वो उन दवाइयों के आदि हो जाते हैं। जैसे वो किसी भी कारण से छोटी सी सर्जरी से गुजरे हों या कोई दर्द वगैरह हुआ हो और उन्हें कोई दवाई बताई गई और उसके बाद वो उनकी आदत में आ गया।
It kind of all really happens, you know, quite accidentally if you say it that way. So, you know, they might have been to a hospital for minor surgery, or if they've gone to a dentist, or they suffer from chronic back pain and they've been prescribed these medications, and unfortunately sometimes, you know, the patient might not kind of take the medications as prescribed.
बस कुछ ही हफ्तों में कोई इन दवाइयों का आदि हो जाता है। इस दिशा में नॉट फॉर प्रॉफिट एक और संस्था है, पेनिंगटन इंस्टीट्यूट, और इसके CEO हैं जॉन रायन। ये संस्था भी काम कर रही है 31 अगस्त को इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे के लिए। श्री जॉन रायन कहते हैं कि कोई भी दवाइयों का आदि यानी एडिक्ट हो सकता है। वो कहते हैं कि लोगों को लगता है कि ड्रग्स जैसे कि हेरोइन या कोई दूसरी गैर कानूनी ड्रग के ही लोग आदि हो जाते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। वो बताते हैं कि ओवरडोज से मरने वाले लोगों में सबसे अधिक वो हैं जो डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाई खा रहे थे।
People used to think that the overdose problem was just about heroin or illegal drugs, and it only affected people that were illegal drug users. But actually, most overdose deaths in Australia are from prescription drugs, and it's not just people living in the inner city. It's actually right across the cities, in suburban areas, as well as in regional and rural areas. And it's right across the age range as well. In fact, the most risky age is between 30 and 60.
वो सलाह देते हैं कि यदि आपको पेन किलर जैसे कि मॉर्फिन या ऑक्सीकोडोन डॉक्टर लिख कर देते हैं तो आप अपने डॉक्टर और फार्मासिस्ट से इसके बारे में बात करें और ठीक से समझें कि आपको कैसे और कब इसे लेना है, और निर्देशों का पूरी ईमानदारी और पूरी सख्ती के साथ पालन करें।
I would really encourage people to talk very openly with their doctors about these drugs. It's, you know, they've got a very important medical role, and they're actually good drugs. The only risk is if they're not taken as directed, and for example, combining these drugs with alcohol is not recommended. That really increases overdose risk. So it's actually important for people to have a good understanding of these drugs, and also to follow clearly the doctor's instructions and the pharmacist's instructions.
बहुत से लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता कि प्रिस्क्राइब्ड दवाई और यहाँ तक कि साधारण से साधारण काउंटर पर मिलने वाली दवाई भी आपके लिए कितनी घातक हो सकती है। और जानते हैं, पॉल को ऐसा ही कुछ हुआ। कई साल पहले उसे चोट लगी और उसे कोडीन वाली दवाई दी गई। इसके बारे में कोई अधिक चेतावनी भी नहीं थी और उस समय वो 21 वर्ष के थे। वो बताते हैं कि कैसे न्यूरोफेन प्लस, जो उन्होंने शुरू में एक दिन में दो गोलियां ली, वही बढ़ते बढ़ते 6 तक पहुंच गई। बात 90 गोलियों तक पहुंच गई जब वो जा पहुंचे अस्पताल में।
I had a sports injury, a shoulder injury playing football, and I was taking Panadol for that, and that wasn't working, and a friend suggested taking some medication called Nurofen Plus, that's where it all started. I was taking two a day, and then it got up to four and five and six, and then to eventually it got to 90 tablets a day before I got rushed to hospital.
Paul, जो दवाई ले रहे थे, अब फरवरी 2018 से वो डॉक्टर की सलाह पर ही मिलेगी. और यही एक कदम उठा है कि दवाइयों पर बेहतर रोक लगाने के लिए, यानी पेन किलर्स और दूसरी दवाइयों पर जो डॉक्टर द्वारा ही दी जाएं. सरकार एक नई प्रिस्क्रिप्शन ड्रग मॉनिटरिंग प्रणाली की शुरुआत कर रही है अगले 18 महीनों में. और स्क्रिप्ट वाइज की बी मोहम्मद ने समझाया कि किस तरह से दवाइयों पर चौकसी की जाएगी.
It will be the first system in Australia that would allow GPs and pharmacists to have access to the information just so they're able to ensure that before they write their script, that's actually a patient that's not gotten their script somewhere else, or potentially to kind of really understand what kind of dosage of medications that the patient is on, and then whether to understand whether the patient might be at risk of dependency or not. So it's something that would really, I guess, allow health professionals to make a more informed decision, really.
यानी इस प्रणाली से इस बात पर निगरानी रहेगी कि मरीज दो जगहों से स्क्रिप्ट या प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले रहा, और साथ ही कि मरीज को दवाई के बारे में कितना समझ में आया है और क्या उसकी इसके प्रति आदत तो नहीं बन रही, वगैरह वगैरह. अगर आप या कोई और जिसे आप जानते हो वो इस समस्या से जूझ रहा है तो जाने कि इस दिशा में सहायता मौजूद है. बी कहती हैं,
There's actually different services in different states, so it really depends which state that you live in. There's helpline numbers to just talk about your issue, and what these helplines usually do is they might be able to refer you to the right GP, potentially look at a recovery or even like a treatment plan to get you off these medications. And what we're really trying to do ultimately is to say to people, if you feel that you might be developing that dependency, it just kind of knowing that there's nothing wrong with what they feel, and it's just about having the right conversation and seeking help.
यानी हेल्पलाइन नंबर हैं, और साथ ही यदि लग रहा है कि किसी दवाई की आदत हो गई है और पूर्ण रूप से उसी पर निर्भर हो गए हैं तो इस बारे में डॉक्टर से बात करें और पूरी तरह से स्वास्थ्य की चौकसी करें. और अभी हमने पहले बात बताई थी पॉल की, जब वो अस्पताल में भर्ती हुए तो उनके शरीर से वो दवाई बाहर की गई, यानी उन्हें डिटॉक्स किया गया और उसे इस आदत से छुटकारा भी मिला. और वो, यानी पॉल बताते हैं कि कैसे वो अपनी इस आदत की वजह से सबसे अलग थलग से पड़ गए थे. पेनिंगटन इंस्टीट्यूट से जॉन रायन सबको सलाह देते हैं कि जो भी दवाइयों पर निर्भर कर रहे हैं उन्हें अपने जीपी से इस संबंध में बात करनी चाहिए, ताकि समझा जाए कि कितना खतरा है और क्या करना चाहिए.
Part of the solution is actually to have conversations about drugs and to have conversation about addiction, so that we can actually better understand the risks and also better understand how to respond. And doctors are actually an excellent resource to talk about these issues. And I don't think people should feel shy to talk to their doctors about these issues. Obviously, it's always an uncomfortable conversation, but it's actually really much better to have the conversation than to keep silent.
अगर आप या आपके जानने वाले को इस दिशा में सहायता चाहिए तो अपने जीपी से बात करें या लाइफलाइन यानी 1-3-11-14 पर फोन करें, या इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे की वेबसाइट पर जाएं और पूरी जानकारी हासिल करें. सबसे महत्वपूर्ण, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आप सुन रहे हैं SBS हिंदी. अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम. आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS रेडियो मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं. sbs.com.au/hindi पर जाएं.